समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
हम सब वक्त के मोहताज हैं। सही वक्त पर सही काम किया तो कामयाबी, लेकिन अगर वक्त बर्बाद किया तो दरअसल वो बर्बादी हम खुद अपने हाथों अपनी जिंदगी में ले आते हैं। फिलहाल हमारे स्टूडियो की घड़ी बिल्कुल सही वक्त बताते हुए हमसे कह रही है कि अपने श्रोताओं को बता दिया जाए कि शाम के 4:30:33 हुए हैं, जो आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम परिक्रमा का समय है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, क्षेत्रीय संवाददाताओं के माध्यम से कुछ क्षेत्रीय समाचार, खेल गतिविधियां और उन महान हस्तियों को भी आज हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है। नमस्कार, स्वागत है सभी श्रोताओं का इस दैनिक न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा में। साथ हूं आपके मैं नईम अख्तर और मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, कैसी हैं आप?
बिल्कुल बढ़िया, अच्छे हूं। हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून नईम। दशहरा इज ओवर बट द फेस्टिव मूड इज स्टिल गोइंग ऑन। फ्रॉम सेप्टेम्बर टू जनवरी वी हैव द पीक फेस्टिवल सीजन विथ वेरियस सेलिब्रेशन हैपनिंग वन आफ्टर द अदर एंड समटाइम्स इवन साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। Festivals are occasions that bring people closer, fostering a sense of unity and brotherhood. They allow us to set aside our differences and come together to celebrate the joy and happiness that these occasions bring. India celebrates over 30 festivals each year, each one a unique experience. Now that Diwali is near the corner, there will be many Diwali melas in different cities, in our city also. So set your date, set your mood and enjoy. While we will always be here for you with all the entertainment and news, so let's first get updated on today's headlines at this hour of the day.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक प्रारूप तैयार करने के महत्व को दोहराया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आईटीयू विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया।
इलेक्शन कमीशन अनाउंस्ड शेड्यूल फॉर महाराष्ट्र एंड झारखंड असेंबली पोल्स टुडे।
शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में आज शुरू होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
इंडियन शूटर सोनम मस्कर विन सिल्वर मेडल इन विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल।
और अब वक्त है डेडलाइन इंडिया का।
And now time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about World Students Day and International Day of Rural Women.
Ji.
Welcome to our special broadcast celebrating World Students Day, which is observed every year on 15th of October, as this day honors the incredible legacy of Dr. APJ Abdul Kalam, an esteemed educator, visionary leader, and former president of India, whose commitment to education has inspired millions of students worldwide. The birth anniversary of India's former president, Dr. APJ Abdul Kalam, is celebrated as World Students Day to commemorate his achievements and his love for students. He served as the president of India from 2002 to 2007 and was an eminent scientist and who worked with the Defence Research and Development Organisation for over 40 years. Even after becoming the president of India, Kalam loved to interact with school children and young minds. Today we will explore the significance of this day and its theme for 2024, that is, empowering students to be agents of change.
जी, विश्व छात्र दिवस सिर्फ छात्रों का जश्न मनाने के बारे में नहीं है, ये भविष्य के नेताओं और नवोन्मेषकों के रूप में उनकी क्षमता को पहचानने के बारे में है। शिक्षा उनके सपनों और आकांक्षाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि डॉक्टर कलाम ने कहा, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे शिक्षा छात्रों को सामाजिक चुनौतियों से निपटने, जिम्मेदारी, दृढ़ता और परिवर्तनकारी कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाती है। ये छात्रों के लिए अपनी शिक्षा का उपयोग करने और ऐसे परिवर्तनकर्ता बनने का आह्वान करती है जिसकी हमारी दुनिया को सख्त जरूरत है।
Right, and Naeem, now let's talk about the activities taking place around the world to mark the significant day. Schools, colleges and universities are hosting a variety of events, each aimed at inspiring students and promoting the values of education, like seminars and workshops, where institutions are organizing seminars to motivate students and discuss critical educational issues. These workshops provide platforms for students to express their ideas and learn from experts in various fields. There are also essay compositions organized. There are celebration events being organized. Community service activities are also a highlight of World Students Day, where students participate in various outreach programs, demonstrating the power of collective action and responsibility towards the society.
तो आइए आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन और योगदान पर एक पल के लिए विचार करते हैं. तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में जन्मे डॉक्टर कलाम भारत के सबसे प्रिय नेताओं में से एक बन गए. वो अक्सर बड़े सपने देखने और उन सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने के महत्व पर जोर देते थे. उनका मानना था कि शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि मूल्यों को स्थापित करना और रचनात्मकता को बढ़ावा देना भी होना चाहिए. बेहतर भारत के लिए उनका दृष्टिकोण युवाओं को सशक्त बनाने पर आधारित था और उन्होंने उस दृष्टिकोण को वास्तविकता बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया.
Right, a visionary and a genius, former President of India APJ Abdul Kalam, popularly known as the Missile Man of India and People's President due to his humble approach towards life and people. The message at the end of his speeches often centered on themes of inspiration, education and youth empowerment. While the specific message varied from speech to speech, a common thread was his encouragement for young people to dream big, work hard, and contribute positively to society and the nation's development. He often emphasized the importance of education, innovation, and a strong work ethic in achieving personal and national goals. Dr. Kalam's speeches aim to motivate and instill a sense of responsibility and hope in his audience, particularly among the youth, and his messages were characterized by optimism, patriotism, and a belief in the power of individuals to make a difference.
आइए शिक्षा, नवाचार और नेतृत्व के प्रति स्वयं को प्रतिबद्ध करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की विरासत का सम्मान करना जारी रखें. बड़े सपने देखते रहें और कड़ी मेहनत करते रहें.
Yes, Naeem, and now we are also talking about International Day of Rural Women, celebrated annually on 15th of October. Today we are recognizing the remarkable contributions of rural women across the globe. This year's theme is Rural Women Sustaining Nature for Our Collective Future, emphasizing their crucial role in building climate resilience, conserving biodiversity, and caring for the land while advancing gender equality and empowering women and girls. Achieving gender equality and empowering women is not just the right thing to do, it's vital in the fight against poverty, hunger, and climate change. Rural women make up a significant portion of the world's agricultural workforce, producing half of the global food supply while serving as stewards of the environment.
लेकिन फिर भी उनके आवश्यक योगदान के बावजूद अनुजा उन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है और लैंगिक असमानताओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण उन्हें अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. आज हम उनके प्रयासों पर प्रकाश डालने, उनकी कहानियां सुनने और ये पता लगाने के लिए यहां हैं कि हम उनके सशक्तिकरण का समर्थन कैसे कर सकते हैं. ग्रामीण महिलाएं अक्सर जलवायु संकट की अग्रिम पंक्ति में होती हैं और इसके सबसे कठोर प्रभावों का सामना करती हैं, लेकिन वो इन चुनौतियों का जवाब देने की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं. किसान के रूप में वो टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाती हैं, जैसे सूखा प्रतिरोधी बीज, जैविक खेती के तरीके और पुनर्वनीकरण परियोजनाएं अपनाना. स्वदेशी महिलाएं विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता को संरक्षित करने और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए अमूल्य पैतृक ज्ञान लाती हैं जो उनके समुदायों और हमारी पृथ्वी को लाभ पहुंचाती हैं.
ऑफ कोर्स, व्हाइल रूरल वुमेन आर लीडिंग द वे इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, दे कंटिन्यू टू फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस. रिपोर्ट्स शो दैट क्लाइमेट चेंज हैज अ डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन रूरल एंड इंडिजिनस वुमेन. Their reliance on agriculture, combined with limited access to resources and decision-making power, makes them particularly vulnerable to environmental changes, biodiversity loss, and also pollution. But it's not just about vulnerability, it's about empowerment. These women are often excluded from key decision-making processes that directly affect their communities and their livelihoods. This must change if we are to achieve true gender equality. And today's theme, Rural Women Sustaining Nature for Our Collective Future, calls on us to promote the participation of rural women in decision-making within their communities. It's time for a more inclusive approach where women are equally involved in planning and implementing climate and agricultural policies.
हमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वकालत करने की जरूरत है जहां महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर मिलें, चाहे वो जमीन, शिक्षा, तकनीक या नेतृत्व की भूमिका तक पहुंच हो। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो समुदाय समृद्ध होते हैं और हमारा पर्यावरण बेहतर तरीके से सुरक्षित रहता है। अब आइए बात करें कि ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और पर्यावरण संबंधी कार्यों में सहयोग के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे लैंगिक समानता की वकालत, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना और उनके प्रयासों का समर्थन करना। याद रखें कि ग्रामीण महिलाएं सिर्फ भोजन उपलब्ध कराने वाली नहीं हैं, वो हमारे पर्यावरण की रक्षक हैं और सतत विकास का आधार हैं। तो आइए हम उनके नेतृत्व, ज्ञान और हमारे सामूहिक भविष्य में योगदान का समर्थन और प्रचार करना जारी रखें।
Yes, as we celebrate the incredible work of rural women around the world, let's carry forward their mission, work for gender equality and commit ourselves to building a sustainable and inclusive world.
और अब समय है अनुजा अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है। एक खबर हम आपको दे रहे हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है, जिसके बाद इसका अध्ययन अध्यापन करने वालों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी देश विदेश से छात्र यहां पाली भाषा का अध्ययन और शोध करने के लिए आते हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार के इस फैसले से पाली भाषा के प्रचार प्रसार के साथ ही शोध संवर्धन, भाषा के विकास के विषयों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना भारत की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे भाषा से जुड़े शोध रोजगार के क्षेत्र में नई उम्मीद जगी है। वहीं प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का भी बड़ा मौका मिलेगा। वाराणसी में अशोक स्तंभ हो या सारनाथ में बौद्ध धर्म के निशान, इन जगहों पर पाली भाषा के प्रयोग हुए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पाली भाषा एवं बौद्ध अध्ययन विभाग में वरिष्ठ प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे, खासकर एकेडमिक और रिसर्च के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इन भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण से संग्रह, अनुवाद, प्रकाशन और डिजिटल मीडिया में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
भारत सरकार के इस कदम से पाली भाषा और साहित्य में हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन शुरू होगा। जो 200-250 सालों से यूरोप में और अमेरिका में पाली भाषा और साहित्य का अध्ययन चल रहा है और हम पीछे छूट गए हैं। अभी तक हमारे पास पाली भाषा और साहित्य के जो भगवान बुद्ध के सारे उपदेश हैं उनका हिंदी अनुवाद या भारतीय भाषाओं में अनुवाद तक उपस्थित नहीं है। तो मुझे लगता है कि पाली भाषा एक नया जीवन पाएगी। उसके जो पांडुलिपियां हैं बहुत सारी जो अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाई हैं, उनका संरक्षण होगा, नए अध्ययन सामने आएंगे और पाली भाषा और साहित्य के भारतीय भाषाओं में अनुवाद होंगे। युवा पीढ़ी में जिस तरह से इधर मैंने देखा कि हिंदू अध्ययन, संस्कृत के प्रति बहुत आईटी और दूसरे विषयों से भी लोग रुचि ले रहे हैं, मुझे लगता है शास्त्रीय भाषा का निर्णय होने के बाद पाली भाषा और साहित्य के प्रति युवाओं में रुचि बढ़ेगी। जब अध्ययन केंद्र स्थापित होंगे तमाम विश्वविद्यालयों में, जब इस विषय की पढ़ाई के विभाग खोलेंगे तो युवा पीढ़ी रुचि लेगी और इसके माध्यम से वो भारत के अतीत को ज्यादा विस्तृत रूप से, ज्यादा व्यापक रूप से समझ सकेगी। और जब ऐसे विश्वविद्यालयों में विभाग खोलेंगे, शोधपीठ बनेंगे और शोध संस्थानों की स्थापना हो तो इन युवा वर्ग के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, उसमें शोधकर्ता के तौर पे, अध्यापक के तौर पे और तमाम फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप के माध्यम से उनकी रुचि पैदा हो सके।
शास्त्रीय भाषाएं भारत की गहन और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक के रूप में काम करती हैं, जो प्रत्येक समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हैं। पाली भाषा को लेकर सरकार के फैसले के बाद अब उम्मीद है कि इसमें लोगों की न केवल अभिरुचि बढ़ेगी बल्कि भविष्य के लिहाज से बेहतर मौके भी बनेंगे। परिक्रमा के लिए शैलेंद्र शर्मा, आकाशवाणी संवाददाता, लखनऊ।
और अब चलते हैं उत्तराखंड, जहां चार धाम यात्रा अपने अंतिम चरण में है। सभी धामों के कपाट बंद होने की तिथि घोषित हो गई है, जिसके बाद से चार धाम के लिए प्रतिदिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ने लगा है। चार धाम यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारी राज्य संवाददाता साक्षी सिंह के पास।
उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा ने मॉनसून खत्म होने के बाद एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। चारों धाम के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 41 लाख के पार पहुंच गया है। चारों धाम के कपाट बंद होने की तिथि तय होने के बाद चारधाम यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं में उत्साह और अधिक बढ़ गया है और धाम में पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। केदारनाथ में हर रोज 10,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहीं बद्रीनाथ में भी 5,000 से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन बाबा बद्री विशाल की पूजा अर्चना कर रहे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री में भी हर दिन 4,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में अब तक लगभग 14 लाख भक्तों ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 11 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक गंगोत्री धाम में 7.5 लाख से अधिक भक्त दर्शन कर चुके हैं, जबकि यमुनोत्री धाम में अब तक 6,60,000 से ज्यादा तीर्थयात्री आए हैं। गौरतलब है कि गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्व पर 2 नवम्बर को बंद होंगे। इसके बाद ही केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भैयादूज पर्व पर 3 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होने के साथ ही प्रदेश में चारधाम यात्रा संपन्न हो जाएगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we are paying tributes to the great but unsung revolutionary freedom fighter, Durga Devi Vohra, also known as Durgavati Devi, who left us on 15th October in 1999. She was a key member of Chandrasekhar Azad and Bhagat Singh's Hindustan Socialist Republican Association, HSRA.
Another association member, Bhagwati Charan Vohra, was her husband. And hence, the association members used to call her Bhabhi, and she became popular as Durga Bhabhi in Indian revolutionary circles. At that time, she was one of the few women revolutionaries who actively participated in the armed revolution against the ruling British Raj.
After Saunders's assassination on 17th of December 1928, Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru came to Durga Devi for help. She not only gave them a large sum of money, rather daringly agreed to help them escape Lahore. She posed as the wife of Bhagat Singh and put her infant son Sachin in his lap while Rajguru carried their luggage as their servant.
They passed fearlessly through a police cordon and boarded a first-class train carriage for Lucknow, where they changed trains for Calcutta. In order to avoid recognition, Bhagat Singh had shaved off his beard and cut his hair short the previous day and dressed in a Western attire.
After attending some sessions of the Calcutta Congress, Durga Devi returned to Lahore with her son. In April 1929, Bhagat Singh and his associate Batukeshwar Dutt set off two low-intensity homemade bombs among some unoccupied benches of the Central Legislative Assembly.
In Lahore, investigators discovered the HSRA's bomb factory in Kashmir House, which was rented out in Durga Bhabhi's husband Bhagwati Charan's name. They arrested Sukhdev, Jai Gopal and Kishori Lal, but Bhagwati Charan managed to go into hiding.
During this period, Durga Devi supported the families of revolutionaries in Lahore and helped in passing on letters for absconding revolutionaries. She led the funeral procession of revolutionary Jatin Das from Lahore to Calcutta after his death in a 63-day jail hunger strike. She was also involved in the procurement of weapons for the revolutionaries around this time.
In 1929, Bhagwati Charan and Durga Devi were involved in a plot with Chandrasekhar Azad, Yashpal and Vaishampayan to free Bhagat Singh from prison by raiding a police van during his transfer from Borstal to Central Jail in Lahore.
On 28th May 1930, Bhagwati Charan died when he was testing a bomb in a forest and it exploded prematurely in his hand. Following her husband's death, Durga Devi was constantly on the move, staying one step ahead of police.
When Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were awarded the death sentence, Durga Devi attempted to kill Lord Haley, an ex-governor of Punjab and a staunch enemy of revolutionaries. Although Haley escaped, his several associates died. Durga Devi was caught by the British police and imprisoned for 3 years.
After independence, Durga Devi started living as a common citizen in quiet anonymity in Ghaziabad. She later opened a school for poor children in Lucknow. She died in Ghaziabad on October the 15th, 1999, at the age of 92.
Her courage and fearlessness were indeed like Durga Ma, as she fought against the evil British imperialist forces to free her motherland from foreign rule. And now coming to the business news of the day, the domestic benchmark indices today ended with losses. The BSE Sensex shed 153 points or 0.1% to close at 81,820, and the NSE Nifty ended with a fall of 70 points or 0.2% to settle at 25,057. In the global crude market, Brent crude was trading at 4.8% down at $73.67 per barrel. In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading at 76,280 rupees per 10 grams, while silver was trading at 90,870 per 1 kilogram when reports last came in.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में, जहां जानते हैं आज की क्या हलचल है. भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर ने दिल्ली में खेले जा रहे ISSF विश्व कप 2024 में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है. 22 वर्षीय मस्कर ने 252.9 अंकों के साथ फाइनल मुकाबले में दूसरा स्थान हासिल किया. चीन की यूटिंग हुआंग ने स्पर्धा में स्वर्ण, जबकि फ्रांस के निशानेबाज ओसियाने मुल्लर ने कांस्य पदक जीता. इसी स्पर्धा में भारत के एक अन्य निशानेबाज तिलोत्तमा सेन 167.7 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहीं.
And if in men's singles of Denmark Open 2024 badminton tournament, match between the world number 19 Indian shuttler Lakshya Sen lost his round of 32 match against the 17th ranked Lu Guangzhou of China in the third largest city of Denmark, Odense. In women's doubles, the Panda sisters Ritu Parna and Shweta Parna also lost their round of 32 match against the Chinese Taipei duo. In women's singles, two-time Olympic medalist PV Sindhu is slated to take on Chinese Taipei's Pai Yu Po in the opening round at Arena Finn in Odense this evening. And in mixed doubles, Satish Kumar Kurunakaran and Adya Variyath will clash against Indonesian pair of Rehan Naufal Kusharjanto and Liza Ayu Kusumawati this evening.
और अब वक्त है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है. तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं एक बहुत ही महान हस्ती को, जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला. एक कवि, गीतकार, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी पुण्यतिथि आज है, जिनका जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ. इनके साहित्य पर बंगाल की छाप देखी जा सकती है. मूल रूप से इनका पैतृक घर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है. छायावाद युग के प्रवर्तक कहलाते हैं निराला. इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और संस्कृत भाषा में थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत लिखा. हिंदी काव्य क्षेत्र में निराला का पदार्पण मुक्त वृत्त के साथ होता है. वो इसके प्रथम प्रस्तुतकर्ता हैं. असल में निराला की उद्यम भावधारा छंद के बंधन बांध नहीं सकते थे. उन्होंने परिमल की भूमिका में कुछ लिखा था. उनकी एक बहुत ही मशहूर कविता है तोड़ती पत्थर, उसकी कुछ पंक्ति आपने श्रोताओं के लिए. वो तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वो जिसके तली बैठी हुई स्वीकार, शाम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार. ये एक महान हस्ती सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1961 में आज ही के दिन 15 अक्टूबर को अपनी यादें हमारे साथ छोड़कर हमेशा के लिए इस लोक को अलविदा कह गए.
And today we also pay tribute to an Indian sculptor, painter and educator, Devi Prasad Roy Chaudhary, who is having his death anniversary today. He is well known for his monumental bronze sculpture, especially the Triumph of Labour, also known as the Labour Statue, which is at Marina Beach in Chennai. And the Martyrs Memorial in Patna, also known as the Shaheed Smarak, is a life-size statue of 7 young men who died in the Quit India movement of 1942 to hoist the national flag on the Secretariat building. And this personality is rated by many as one among the major artists of Indian modern art. His iconic work, Gyarah Murtis, located outside the President House at the end of T-junction of Sardar Patel Marg in New Delhi, which is a tribute to the Gandhian ideal of non-violence and highlights its role in the Indian freedom struggle. And then we come to another personality who's having his death anniversary today, Bhanu Athaiya.
Ji, aaj unki punyatithi hai. Cinema ke suprasiddh dress designer Bhanumati Anna Saheb Rajopadhyay, yani aapki aur hamari jani pehchani Bhanu Athaiya, jo pehli Bharatiya mahila rahi jinhone Oscar puraskar jeeta tha. Bhanu Athaiya 5.5 dashak tak Hindi cinema mein sakriya rahi. Is dauran unhone dress designing ko nit naye aayam diye. Unhone mashhoor film nirmata nirdeshak Richard Attenborough ki film Gandhi ke लिए सर्वश्रेष्ठ ड्रेस डिजाइनर का ऑस्कर प्राप्त किया. भानु अथैया 100 से भी ज्यादा फिल्मों के लिए डिजाइनिंग करके रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा चुकी थीं. 1953 से उन्होंने ड्रेस डिजाइनर के रूप में अपना काम शुरू किया था. ड्रेस डिजाइनर के रूप में उनकी प्रमुख फिल्में प्यासा, श्री 420, साहिब बेबी और गुलाम, वक्त, रेशमा और शेरा, लेकिन लगान, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आदि हैं. फिल्म गांधी के लिए 1983 में ऑस्कर अवार्ड, फिल्म लेकिन के लिए 1991 में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, 2009 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया. भानु अथैया ने फिल्म गाइड में वहीदा रहमान, ब्रह्मचारी में मुमताज, सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान के वस्त्र डिजाइन किए थे. 50 साल के करियर में उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में ड्रेस डिजाइन की और 91 वर्ष की आयु में 15 अक्टूबर 2015 को मुंबई में इनका निधन हो गया. जो आपको बैकग्राउंड में गाना सुनने को मिल रहा है, ये उनकी राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड विजेता फिल्म लेकिन से है. And today we also pay tribute to Shankar Singh Raghuvanshi, a music director and composer in the Indian film industry, who was born today in the year 1922, and he was the famous one of the famous members of member of the Shankar Jay Kishan duo, and he and Jay Kishan made their debut in the 1949 film Barsaat. The duo won 9 Filmfare Best Music Director awards, and he also won Padma Shri in 1968. Right now we have a very beautiful song from the movie Barsaat.
पतली कमर है तिरछी नजर है, पतली कमर है तिरछी नजर है, खिले खून सी तेरी जवानी हुई बताए कहाँ कसर है. पतली कमर है तिरछी नजर है, पतली कमर है.
The trivia about this song is that this was the first cabaret number in the Hindi movies of those times.
जी, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, पश्चिमी बीट, सभी का खूबसूरत प्रयोग किया इस जोड़ी ने फिल्मों में. फिल्म संगीत में भाव और लय को स्थापित करने में ऑर्केस्ट्रा का भी भरपूर उपयोग किया, जो सिर्फ पहले फिलर के रूप में इस्तेमाल होता था. तो शंकर जयकिशन के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और खासतौर पर आज शंकर की जयंती है तो उनको हमारी तरफ से ट्रिब्यूट है.
Right, their best work was noted for being rag-based and having both lilt and sonority. Their early works include Avara, Shri 420, Basant Bahar and many beautiful rhythms. Shankar started his career with a theatre group run by Satya Narayan and Hemvati before shifting to Prithvi Theatres, where he played tabla and performed some minor roles in plays. It was at Prithvi Theatre that he learnt to play and mastered several other instruments like sitar, accordion and piano and all these. But let's listen to another lovely song from his movie.
और आज आज जन्मदिवस है विक्टर बैनर्जी का। 15 अक्टूबर 1946 को जन्मे थे। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और असमिया फिल्मों में काम किया है। एक सहायक अभिनेता के रूप में पहचाने जाते हैं। विक्टर बैनर्जी ने रोमन पोलंस्की, जेम्स आइवरी, सर डेविड लीन, जेरी लंडन, रोनाल्ड नेम, सत्यजीत रे, मृणाल सेन, श्याम पेनेगल, मोंटाजूर रहमान, अकबर और रामगोपाल वर्मा जैसे निर्देशकों के साथ भी काम किया। और इन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार घर बारे के लिए भी जीता था।
राइट, एंड ऑल्सो ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण नेम विच इज इंडियाज थर्ड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द ईयर 2022 फॉर हिज ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा।
और श्रोता, वक्त हो चुका है कि अब हम आपसे अनुमति ले लें, तो इजाजत दीजिए परिक्रमा से नईम अख्तर और अनुजा कुमार को।
नमस्कार।